તારીખ 9/5/1989 શ્રી સમયસાર ગાથા 164 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 1
એ તર્ક હો સકતા હૈ કે હમકો તો જ્ઞાની કો ભી રાગ હોતા હૈ એસા પ્રત્યક્ષ તૌર સે દેખને મે और यहाँ आचार्य भगवान कैसे कहते होंगे कि ज्ञानी को भावाश्रम नहीं है, ये प्रश्न हो सकता है। तो जो भी चारित्र मोह के रागादि विशुद्ध परिणाम होते हैं उसमें ज्ञानी तन्मय नहीं होते, क्या अंतरंग में परिणमन में क्या भेद है कि उन भावों से वो तन्मय नहीं होते, उन भावों में वो अपना अस्तित्व को महसूस नहीं करते, अपने से भिन्न इस भावों को अनुभव करते हैं कि वो अपने से भिन्न है। एक बहुत अलौकिक घटना है जिसका निर्देश इस महान परमागत में सभी अधिकार में जगह जगह पे बहुत सी गाथा में आचार्य भगवान ने किया है। क्यों ये अलौकिक घटना है कि जीव के परिणाम में होते हुए भी क्या है तो इसी जीव के परिणाम में और स्वयं के परिणाम में होते हुए भी वो भिन्न महसूस होते हैं, वो कैसे हो सकता है? होते हैं तो अपने खुद के परिणाम में होते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे जीव में होते हैं और भिन्न जानते हैं। आपके परिणाम तो मेरे से भिन्न है, लेकिन मेरे ही अशुद्ध परिणाम मेरे से भिन्न हो, ये बात कैसे समझ में आ सकती है? ऊपर ऊपर से तो ये बात अस्वीकार होना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन बात कोई ऐसी है, अगर हम ज्ञानी के स्वरूप को पहचाने, ज्ञानी के स्वरूप को जाने, तो इस बात का स्वीकार होता है कि इनके ही अशुद्ध परिणाम से वे भिन्न है। बात मामूली नहीं है। कोई भी जीव किसी भी प्रकार का अपराध करता हो और यही जीव ऐसा कहे कि मैंने नहीं किया, हम क्या समझेंगे? आदमी प्रमाणिक नहीं है, क्या समझेंगे? आदमी प्रमाणिक नहीं है, शुद्ध तो परिणाम रागादि का करता है और कहता है कि मैंने नहीं किया, उसकी प्रमाणिकता पर हमें शंका हो जाएगी, है ना? लेकिन यहां लोकोत्तर प्रमाणिकता है, लौकिक प्रमाणिकता का ये विषय है सामान्य तौर से, लेकिन ये लोकोत्तर प्रमाणिकता का विषय है, इसलिए ये बात मामूली नहीं है। इसलिए नहीं कि अगर ठीक तरह से ज्ञानी का परिणमन समझा जाता है को ज्ञानी की पहचान हो जाती है, और ज्ञानी की पहचान होने से जिसको पहचान होती है वो स्वयं आगे जा करके स्वयं ही ज्ञानी बन जाता है। इसलिए मामूली बात नहीं है। आचार्य महाराज ने ऐसी बात क्यों लिखी? ज्ञानी को भावाश्रमों के अभाव से प्राप्त है। प्राप्त नहीं है इसका मतलब कि अभाव को प्राप्त है, ज्ञानी भावाश्रय के अभाव को प्राप्त है, ऐसा शब्द पड़ा है। भावाश्रय अभावम प्रपन्नः, इतना संस्कृत शब्द है। तो भावाश्रय का अभाव उसको प्राप्त है, ऐसा ज्ञानी का स्वरूप है। अगर हमारी समझ में आए तो इसका लाभ कितना, कि इसका लाभ निर्वाण पद है। कितना निर्वाण पद, कैसे कि वो ज्ञानी हो जाएगा तो ज्ञानी का अंतिम परिस्थिति क्या है? नियम से वो निर्वाण में जाने वाला है। इतनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात है। ये समझने के लिए, पहचानने के लिए पात्रता तो अवश्य चाहिए ही, बिना पात्रता ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, इनका लॉजिक समझ में आता है, बिना पात्रता भी इसका न्याय समझ में आता है। तो न्याय मैंने शुरू में ही बोल दिया, क्यों ज्ञानी को भावाश्रम नहीं है? कि वो रागादि परिणाम होते हुए भी इसमें तन्मय नहीं होते, या भिन्न रहते हैं, दोनों एक ही बात है। तन्मय नहीं होते हैं या भिन्न रहते हैं, दोनों एक ही बात है। लेकिन वो कैसे, इसकी जो अंतरंग परिणति है इस प्रकार की, उसमें वो कैसे रह सकते हैं? राग होवे अपने परिणाम में, पर अपने ही उससे भिन्न रह जाए, ये बात कोई मामूली नहीं है, सामान्य बात है। कुछ बात गहरी भी है, गहन भी है। एक एक समाचार की गाथा लो, एक कलश लो, या किसी भी पंक्ति को लो। आचार्य महाराज ने बहुत अनुभवपूर्ण बातें कही हैं, और इसको ग्रहण करने के लिए, यथार्थ रूप से समझने के लिए कुछ इसी प्रकार के खास तौर के समझ या दृष्टि या योग्यता आवश्यक है, वरना इसका न्याय समझ में आता है, चीज समझ में नहीं आता। सराफा में कोई भी आदमी जाएगा, चाहे देहात में आया हो, देखेगा शोरूम को, यही देखेगा कि ये सोना चांदी की दुकान भरी हुई है। क्या देखेगा? सोना चांदी से ये दुकान भरी हुई है। उसको सोना है पीला, चांदी है तो सफेद, उतना तो समझ में आता है। क्या उस चीज को पहचानता है क्या? इस चांदी में कितनी मिलावट है पता चलता है क्या इसको? इस सोने में कितनी मिलावट है पता चलता है क्या इसको? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? किस चीज की पहचान नहीं है उसको? सोने को सोना जानते हुए भी पहचान कोई अलग चीज होती है ना? सोने को सोना जानते हुए भी पहचान कोई अलग चीज होती है। जैसे देसी घी होता है, चाहते हैं घी वाले के पास देसी घी है? हाँ जी, प्योर है। हाँ प्योर, लेकिन प्योर नहीं होता तो क्या पता चलता? पहचान वाले को पता चलता, बिना पहचान वाले से तो घी तो घी देखने में आएगा, घी कोई पानी देखने में नहीं आएगा। घी तो घी देखा जाता है, पानी नहीं देखा जाता है, फिर भी पहचान कोई दूसरी चीज माननी पड़ेगी। वैसे ही आश्रम अधिकार में ऐसा लिखा है कि ज्ञानी को भावाश्रमों का अभाव प्राप्त हो गया है। राजादि भाव चारित्रमों के होते हुए भी उनको नहीं है, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। कोई ऐरे गेरे आदमी बोल देते तो हम मान नहीं करते क्या? कोई मामूली आदमी मान बोल देता, अरे हमने देखा वो तो हमारे सामने गुस्सा कर रहे थे, हमने इनका क्रोध का प्रत्यक्ष अनुभव किया, क्या बोलेगा वो? आचार्य महाराज कहेंगे कि उनको भावाश्रव नहीं है। खुद बोलेगा तो उसकी प्रामाणिकता पर डाउट हो जाएगा, शंका हो जाएगी। लेकिन ये तो ऐसे आचार्य है जो हमारे दिगंबर परंपरा में जिनके वचन आधारभूत माने जाते हैं। भगवान कुंदकुंडाचार्य, भगवान अमृत चंद्राचार्य, भगवान समंत भद्राचार्य, जितने भी हमारे पुराने बड़े बड़े आचार्य हैं, इनके वचन आज आधारभूत माने जाते हैं। क्योंकि हमारे पास गणधर देव के तो ये आदम रहे नहीं, आचारंग सुतपुटांग समवायांग आदि जो बार अंग है उसको आज हमें प्राप्त नहीं है। तीर्थंकर देव की भी उपस्थिति पिछले 2500 साल से अधिक केवलियों की उपस्थिति नहीं है। तो ऐसे महान पवित्र आचार्य हैं जिनके परमागम रह गए हैं, इतना हमारा सौभाग्य है कि ये रह गए हैं। 2000 साल पहले तो लिखे हुए तो हमारे लिए बहुत आधारभूत है। तो ये कौन सी ऐसी चीज है कि राग होते हुए भी नहीं है ऐसा कह सकते हैं और आचार्य महाराज कहते हैं? अगर हमारे दिमाग में वो बात सेट नहीं होती है तो हमें जिज्ञासा में रहना चाहिए, जिज्ञासा में रहना चाहिए। किंतु हमें आचार्यों के वचनों पर हमारा जजमेंट नहीं देना चाहिए, है ना? वरना ये हो जाता है कि नहीं नहीं कैसे मानेंगे, हमने प्रत्यक्ष तौर से राग देखा, ज्ञानी तो गृहस्थी भी होते हैं और मामूली आदमी राजा भी होते हैं, रंक भी होते हैं, अपने अपने उदय के परिणाम भी देखे जाते हैं, पर उदय के परिणाम होते हुए भी आश्रय का अभाव को प्राप्त हुए हैं, ऐसा साफ लिखा है। क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है, गुरुदेव कहते थे ऐसी बातें गले के नीचे उतारनी कठिन पड़ती है। गोली होती तो हम गल जाते हैं, छोटी सी गोली होती तो हम गल जाते हैं, पानी के एक घूंट में नीचे चली जाती है। लेकिन कोई बड़ी लकड़ी होती है, कोई नीचे गले के नीचे उतरती है, ये चावल को खांसते हैं ना, क्या कहते हैं, उछल कहते हैं ना, उछल हमारे सांबे ला कहते हैं, आप उछल कहते हैं, उछल भी कहते हैं हमारे साहित्य के पर, ये गला में से मुसल को उतारने की बात है, गोली उतारने की बात नहीं है। गुरुदेव से कहते थे कि ये जो समय सार की बात है, इसलिए तो संप्रदाय में ये बात चल के समाज समय सार को पढ़ना ही नहीं। क्या कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे तो समय सार को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो मामूली बात नहीं है। ये मूसल को गला गले से नीचे उतारने के बाद बात हो जाती, इसलिए। लेकिन बहुत कीमती चीज, उतनी कीमती चीज है कि अगर पात्रता समेत इस बात को गले उतारी जाती है तो निर्वाण पद का आरक्षण हो जाता है, रिजर्वेशन हो जाता है। ऐसी बात है, अब कही अपनी बात है क्या? ये बात सिद्धांत उठी रही है और ऐसे महान परमात्माओं में ऐसे ऐसे लोकोत्तर सिद्धांतों की का प्रतिपादन हुआ है, आचार्यों ने किया है और हमें आज देखने भी मिलता है। लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष किसी विषय को की गहराई में जाने के लिए हम कुछ तो बात करेंगे कि अगर कोई ज्ञानी पुरुष अपने स्वयं के ऐसे अनुभव की बात करे कि हमारे ऐसे ऐसे उदय चल रहे हैं और हमारे परिणाम भी उदय के साथ ऐसे चल रहे हैं, फिर भी हम कैसे हमारे पुरुषार्थ से इन भावों से भिन्न रह करके हमारी साधना कर लेते हैं, करते हैं, अगर इसका किताब इसका का निश्चय हो चुका है। इनके पत्र में उन्होंने अपने खुद के परिणमन की बहुत सी बातें प्रकट कर दी हैं। कभी भी ज्ञानी अपने मुंह से अपनी बात करते, मेरा से ना कहे लाख हमारा पुत्र, क्यों से सामने वाला शायद ऐसा विचार करेंगे कि ये आत्मश्लाघा करते हैं, स्वयं की प्रशंसा करने लगे, क्या शंका हो जाएगी। दूसरा दूसरे की बात करे तो सहन होती है, पछती भी है, लेकिन खुद अपने महत्ता की बात करे, अपनी विशेषता की बात करे, अपने गुण की बात करे तो सामने वाले को बचाने में खुद ताकत पड़ती है, ताकत चाहिए। इसलिए करीब करीब ज्ञानी तो अपने मुंह से अपनी बात करते ही नहीं है, और जो गुण प्रकट होते हैं ज्ञान दिशा में मोक्ष मार्गी परमात्मा को, जो गुण प्रकट होते हैं ये इनकी संपत्ति है। क्या है? वैभव है, गुण वैभव जिसको बोलते हैं। पांचवी गाथा में आचार्य महाराज ने लिखा है कि एकत्व विभक्त ऐसे आत्मा को मैं दर्शाऊंगा, दिखलाऊंगा, कैसा इसे दिखलाऊंगा, मेरे मेरे वैभव से। देखिए पांचवी गाथा में क्या लिखा है, दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, मेरे आत्मा के निज वैभव से मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा, ऐसा किया है। दिगंबर मुनियों के पास वैभव होता है क्या? दिगंबर मुनियों के पास वैभव होता है कि हाँ, जगत के सर्वोत्कृष्ट वैभवधारी वे होते हैं। जगत में किसी के पास कितना वैभव नहीं है, ऐसा वैभव नहीं है। ऐसे अपने गुण के वैभव से, सद्गुण के वैभव से आत्मा की बात इस समय सार में कह रहे हैं। जगत में भी कोई पैसा वाला आदमी अपना पैसे को बताता है क्या? कोई ये कहेगा कि मेरे पास 10 लाख है या 1 लाख है या 50 लाख है या नहीं है, क्या कर्ज है, लोन लिया है, क्या है, बताएगा कुछ? नहीं बताएगा। कोई अपनी पूंजी नहीं बताता, बताता है क्या? बताने में बहुत से फिर आपत्ति आ जाती है ना, आज के जमाने में तो आती है। इनकम टैक्स के लेकर से डकौती तक की आपत्ति हो सकती है। सही बताते हैं क्या? नहीं बताते। वो भी प्राइवेट फाइल, सीक्रेट फाइल रहती है, सिर्फ इनकम टैक्स ऑफिसर समाज के सामने कोई बताया ऐसी किताब लिखेगा क्या? किताबें ग्रंथ लिखे हैं, कहने का तात्पर्य यह है अपने आप के जो भी परिणाम थे इतराने परिणाम को धर्म के परिणाम को जाने इस परिणाम को कैसे वो करते थे या कैसे उनको होते थे इसकी बहुत सूक्ष्म अध्यात्म बातें अपनी कलम में उन्होंने साधन पर उतारी है और देखने लाए मुमुक्षुओं को अगर इनके अभ्यास से या इनकी गहराई में जाने से अगर ज्ञानी का स्वरूप मालूम पड़ता है या पहचान आता है तो इससे बहुत बड़ा यही दृष्टिकोण है। ऐसे कोई असाधारण दृष्टिकोण के कारण से इसी हेतु से ऐसी गाथाओं की रचना आचार्यों ने भी करी है। ज्ञानी है वो आश्रमों के अभाव को प्राप्त हुए हैं। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अभिगत सम्यक दृष्टि जाने मैंने कौन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अभिगत सम्यक दृष्टि किसी को किसको वीरति नहीं है याद नहीं है शास्त्र महाराज नहीं जानते कि वो त्यागी नहीं घरबार वाले होते हैं मनुष्य तो गृहस्थी होते हैं और अपने अपने पूर्व कर्म के पूरे के कारण किसी न किसी प्रकार के संयोग के बीच में देखे जाते हैं किसी न किसी प्रकार के संयोग के बीच में देखे जाते हैं और पौधिक भाव का सर्वथा भाव हुआ भी नहीं है। त्यागी लोग तो ये कहेंगे कि वो असंयमी है क्या कहेंगे त्यागी जो होंगे वो तो ये कहेंगे कि वो तो असंयमी है ऐसा कहेंगे फिर भी अंतरंग में परमार्थ संयम पाया जाता है। परमार्थिक संयम में वे संयुक्त होते हैं उतना ही नहीं भगवान अमृत चंद्र आचार्य के वचन में तो ये बड़ा धमाका है कि उनको आश्रम का अभाव है तो उनको आश्रम देखते ही नहीं है तुम देखते हो तो तुम्हारी तुम जानो मैं तो नहीं देखता हमारे तो वचन नहीं है ना है तो 1000 साल पहले लिखे हुए आचार मैं तो नहीं देखता तो मैं क्या देखता हूं कि उनको नहीं है तो नहीं है कैसे नहीं है उसी वक्त वो अपने स्वरूप में तन्मय है अपने परिणति से अपने स्वरूप में तन्मय है और अपना अस्तित्व अपने स्वभाव में समाप्त रूप में अनुभव करते हैं इसे आगे अनुभव ही नहीं करते ऐसे परिणाम हो जाते हैं प्रस्ताव मिलेंगे बहुत संसार में मिलेंगे हमारे यहाँ आज से 25 साल पहले भी ऐसे मुनि मिले थे। कैसे मुनि थे कि सेठ को भी डांटे, क्या सेठ को भी डांट सकते थे, कारोबार ऐसे चलाते थे वो बड़ी बड़ी संस्था, और व्यवहार करने में ऐसे व्यवहार करे जैसे खुद ही धनी हो। कैसे? जैसे खुद ही धनी हो। बाहर वाला तो समझे ही नहीं कि दो में धनी कौन है, शेर बैठा है और उन्हें बैठा है, अगर कपड़ा अच्छा पहना हो तो समझे ही नहीं पेट कौन है, क्योंकि शक्ल से तो पर्सनालिटी वाला भी हो सकता है और अधिकार से बात करे। एक पैसा में कम लेने वाला नहीं, क्या बोले? एक पैसा भी मैं कम लेने वाला नहीं हूं। और देख कोई बांध फूट इतना होगा, एक पाए सेठ की अपने जेब में नहीं लेने वाला है। जो धनी होकर बात करता है एक पाई भी सेठ की अपने जेब में लेने वाला नहीं होता। अब देखिए इनके परिणाम कैसे लगते हैं, धनी जैसे लगते हैं। तो कितना प्रमाणिक है कि धनी की एक पाई को भी नुकसान, जितना अपना तनख्वाह है सारा कारोबार अपने हाथ में है, एक पैसा भी हो धनी का वो नहीं दिखा। तो दिखावा कुछ और है, भाषा कुछ और है, भाव कुछ और है, अभिप्राय कुछ होते कि नहीं होते। बहुत से दृष्टांत मिलेंगे, बिल्ली होती है मुंह में चूहा को भी पकड़ती है और अपने बच्चा को भी, है ना? क्या पकड़ पकड़ एक तरीके होती है क्या? कि चूहा को तो खून निकल जाए छोड़ने वाली, और बच्चे को तो छोटा बच्चा है चूहा जितना, उसको जरी भी दुख नहीं हुए, थोड़ा भी दुख नहीं हुए, सनी भी दांत नहीं लग जा रहे, उतना पकड़ में फर्क है। ऊपर ऊपर से कोई बात खरी समझ में नहीं आ रही। ऐसे भाव माता का भी दृष्टांत आता है शास्त्र। एक बच्चे को दाव माता रखते हैं ना, दाव माता मैंने जिसकी माँ मर गई थी, लालन पालन करने वाली माता, खरी माता है। खरी माता तो बच्चे को दो लगा भी देवे, आंख भी दिखा देवे, तो थप्पड़ भी मार देवे, लेकिन वो पगार तनख्वाह लेने वाली कभी मारती कितना भी शरारत करता हो, कितना भी तूफान करता हो, बच्चा समझाई आग नहीं दी जाएगी, दिखाएगी कभी कभी मारेगी भी नहीं, बहुत प्रेम से समझाएगी। प्रेम करती है ना बच्चा, प्रेम करने वाली माता बहुत प्रेम से उनको लालन पालन करेगी, खिलाएगी, मुख प्रेमा देगी सब प्रकार से, लेकिन मातृ प्रेम कहाँ हो सकता है? तनख्वाह लेने वाली में इसके हृदय में मातृ प्रेम आ सकता है बच्चे के प्रति? जो खरी माता को आता है वो उनको बोलेंगे अपना बच्चे को जैसे बुलाती है वैसे ही बुलाएं, सही बात है क्या? बात सही, वैसे सम्यक दृष्टि को अपने ही आगामी परिणामों पर स्वामित्व नहीं है। क्या हुआ है? स्वामित्व नहीं है, ये मेरे हैं, ऐसा स्वामित्व का चला गया। कैसे चला गया? कि अपना शुद्धात्म पद में स्वामित्व आ गया, इसलिए चला गया। दो जगह स्वामित्व नहीं रह सकता, रह नहीं सकता, करना चाहे तो भी नहीं रह सकता। इस स्वामित्व को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारी कोई चीज बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं, फिर देखने में तो आता है वहां से गुजरते हैं, क्या लगता है ये हमने बेचा तो है, उसको कुछ होता है तो हमें कुछ नहीं होता, क्या हालत होगी? गुरुदेव इससे भी एक बढ़िया घटना थी। हमारे घराने में लड़की हुई है, उम्र लायक होने से उनकी सगाई करते हैं, संबंध करते हैं, बस सगाई कर दी, वहां से अपने घर में से उसका स्वामित्व उड़ जाता है। ये घर मेरा था, अब भी मैं यहां रही हूं, लेकिन मेरा मेरा तो वो है, जहां मेरा धनी है वो घर मेरा। क्या परिस्थिति बाहर में नहीं बदलती, अंदर में बदलती है? दृष्टांत क्या कहता है? परिस्थिति बाहर में कुछ नहीं बदली, बाहर में उतना हुआ है कि उसको क्या किया है, बैंगल्स वैंगल्स पहनाते हैं, साड़ी बाड़ी भी आती है, लेकिन बाजार में से भी ये चीज आ सकती है और सगाई वालों के घर से भी आती है, क्या बात एक ही है क्या? है ये चीज बाजार में भी मिलती है, पिताजी भी ला देते हैं, ला सकते हैं, लेकिन वो चीज वो नहीं है, बात कुछ अलग है, सारा स्वामित्व बदल जाता है। ये जो परिणाम होते हैं, वैसे परिणाम अपने स्वयं के स्वामी होते हैं, अपने स्वरूप में जो स्वामित्व हुआ, उस स्वामित्व के कारण अपने ही कहे जाने वाले, क्या अपने ही कहे जाने वाले है नहीं अपने, ऐसे रागादि पर स्वामित्व नहीं रहता। इसका वर्णन आचार्य महाराज करते हैं कि भावाश्रमों के अभाव को ज्ञानी प्राप्त हुए हैं और इसी कारण है द्रव्याश्रमों से तो स्वभाव से ही भिन्न है, वस्तुता से ही भिन्न है, इनके द्रव्याश्रम तो फिर देखने ही नहीं चाहिए, उनको जब इनके भावाश्रम हम नहीं देखते हैं तो द्रव्य कर्म के आश्रय को तो कहां से देखेंगे, बिल्कुल सतही भिन्न है। अज्ञानी मैंने विद्यमान ज्ञानी ऐसे हैं, हा मैंने अयम ज्ञानी स्वयं मैंने सामने जैसे खड़े हैं ऐसे कहते हैं। हम कोई कल्पना नहीं करते, ऐसे ज्ञानी प्रत्यक्ष तौर से हमारे ज्ञान में देखे जाते हैं। अयम ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी जो कि सदा एक ज्ञानमय भाव वाला है, ऐसे ज्ञानी तो सदा जब ध्यान में होते हैं तब नहीं, कभी की बात नहीं, दो योग तो पांच सेकंड का भी नहीं होता, कभी की बात नहीं करते हैं। सदा शब्द संस्कृत में भी पड़ा है, सदा ज्ञानमय एक भाव कहते हैं, क्योंकि मालिक की तो निरंतर ही अनुभव में रहती है। एक चीज खरीद ली, पैसा दे दिया, पेमेंट कर दिया, बिल ले लिया, या डॉक्यूमेंट दे दिया, मकान होता, बात खत्म। भले ही हम रहने को नहीं गए, पेमेंट कर दिया, दस्तावेज उनका डॉक्यूमेंट ले लिया, अभी सामान वामान खरीदने में तो समय लगेगा, कुछ रिनोवेशन भी होगा, बड़े बड़े आदमी के दो चार महीना लग भी जाता है, लेकिन मालिक ही हो गई, वो रहने गए तब मालिक नहीं हुए, जब से अपना ताला लगा दिया, पजेशन हो गया, निरंतर मालिक ही बनी रहती है, सदा ही बनती है ना, कि सदा ही वो अपने मालिक है। जो कि सदा एक ज्ञान में भाव वाला है, इसलिए निराश्रम की है, एक ज्ञानमय भाव वाला होने है और आश्रममय भाव वाला नहीं होने है, वो निराश्रम ही है और मात्र एक ज्ञायक ही है। भिन्न रूप से उनको जैसे भिन्न चीज को देखी जाती है, जानी जाती है, वैसे ही वो भिन्न भाव को भिन्न रह करके सिर्फ जानने वाले रहते हैं, उसका स्वामी बनकर भोगने वाले, वो ऐसे अपने आप को अनुभव करते हैं कि मैं तो एक ज्ञायक भाव रूप हूं, एक ज्ञायक भाव होने से मैं आश्रम भाव को कर ही नहीं सकता हूं, करना चाहूं तो भी मेरे स्वभाव से तो कर ही नहीं सकता हूं। सोने में, लोहे में से सोने की चीज कैसे बन सकती है, और सोने में से लोहे की चीज कैसे बन सकती है, तो बन ही नहीं सकती है। ऐसे मेरा तो ज्ञाय स्वभाव है, मेरे में से आश्रभाव कैसे बन सकते हैं, मेरे द्वारा मेरे में से बनना संभव ही नहीं है, सकता भी ये वस्तु स्थिति है। ऐसी वस्तु स्थिति के अनुभव करने वाले ज्ञानी अगर हमें समझ में आते हैं, पहचानने में आते हैं, तो हमारा हृदय इसके प्रति नमन किए बिना रहता है। क्या हालत बना दी, कैसी हालत बना दी कि वो अपने स्वभाव में ही सदा रहते हैं, ज्ञानमय भाव में ही सदा रहते हैं, ऊपर ऊपर होने वाले और उसके कहे जाने वाले भाव में वो आते हैं। नहीं है, ऐसे भिन्न रहने की जो ताकत है, इनका जो पुरुषार्थ है, इनके परिणाम की जो भी खूबियां हैं, इन खूबियां को अगर समझ में आती है तो हमारा जो मस्तक है वो नतमस्तक हो जाते हैं। क्या कहा बनारसीदास जी ने, शास्त्र साथ इनकी पहचाने, करे कर जोड़ी बनारसी बंधन। ज्ञानी ज्ञानी को बंधन करते हैं, मुमुक्ष तो करे इसमें कोई दो मत हो सकता। ऐसी बातें मूल शब्द में आचार्य महाराज ने अपने शब्द में कही, पंडित जयचंद्र जी ने पर भावार्थ लिखा है, ज्ञानी के राग द्वेष मोह स्वरूप भावाश्रव का अभाव हुआ है। क्या हुआ है ज्ञानी को, राग द्वेष मोह चारित्र मोह होते हैं, दर्शन मोह ज्ञानी को साई नहीं है, लेकिन चारित्र मोह के राग होते हैं, कभी द्वेष भाव भी होते हैं और मोह भी देखा जाता है, फिर भी उनको भावाश्रम का अभाव हुआ है, अपने में वो आश्रव नहीं आता, अपने स्वरूप में वो आता है। राजादी चारित्र मोह के जो परिणाम है वो परिणाम की सीमा में रहते हैं, क्या वे परिणाम अपनी सीमा में रहते हैं और ज्ञानी अपनी सीमा में रहते हैं, एक दूसरे की सीमा में नहीं जाते, प्रवेश नहीं होता। ऐसी बात सीमित हो गए हैं, अपनी सीमा में वो आते नहीं, अपने इनकी सीमा में नहीं जाते, मर्यादा रह गई, एक मर्यादा मत गई। जब से स्वानुभव हुआ और परिणति स्वानुभूति की चालू रह गई, आश्रव भाव जो चारित्र मोह के हैं और ज्ञानमय परिणाम जो दर्शन ज्ञान चारित्र के रत्नत्र के परिणाम परमात्माओं के होते, इनकी अलग अलग सीमाएं हैं, एक की सीमा में दूसरा का प्रवेश। इसलिए उनको भावाश्रम का अभाव हुआ है और वह द्रव्याश्रव से तो सदा ही स्वयमेव भिन्न ही है, वो तो पुद्गल परमाणु है, तो भिन्न क्षेत्र में भिन्न द्रव्य है, ये तो अभिन्न क्षेत्र में भिन्न परिणाम है, क्षेत्र एक होने पर भी परिणाम भिन्न है और भाव भी भिन्न है, जाति भी भिन्न है, हमारी जाति के वो परिणाम नहीं है इसलिए हमारे नहीं है, और परमाणु द्रव्यास्त्रों से तो मेरी ही भिन्न ही है, क्योंकि द्रव्यास्त्र उद्गल परिणाम स्वरूप है। बहुत स्पष्टीकरण जैसे कि ने तो किया है, द्रव्यास्त्र तो उद्गल परिणाम है और ज्ञानी चैतन्य स्वरूप है, और ज्ञानी है तो चैतन्य स्वरूप है। इस प्रकार ज्ञानी के भावाश्रव तथा द्रव्याश्रव का अभाव होने से वह निराश्रव ही है, ज्ञानी तो निराश्रव है इतना नहीं लिखा, निराश्रव ही है ऐसा लिखा है। ऐसे ज्ञानी को इसी नजर से देखना चाहिए, इसी नजर से परखना चाहिए और किसी भी डर से इंसान स्वीकार करना चाहिए। अगर इस तरह से ज्ञानी को स्वीकार नहीं करते तो ज्ञानी को भी हमारे जैसे दूषण वाले हैं, दोष वाले हैं, ऐसा आए बिना रहेगा नहीं। हम भी इनके परिणामों के